आप सुनना शुरू कर चुके हैं न्यूज 18 हिंदी का पॉडकास्ट। इस पॉडकास्ट में अनुराग अन्वेषी आपका स्वागत करता है। स्वीकार करें मेरा नमस्कार। साथियों, आज के पॉडकास्ट में आपको बताएंगे संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन के प्रथम सचिव पवन कुमार बाथे का वह बयान जिसमें उन्होंने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है। इसके अलावा बताएंगे अवैध घुसपैठ की कोशिश के दौरान मालदा से पकड़े गए चीनी नागरिक ने जांच अधिकारियों को चीन के किन मंसूबों की जानकारी दी है। इन खबरों के अलावा कोरोना वायरस, लॉकडाउन और वैक्सीनेशन अभियान को लेकर भी खबरें हैं आज के पॉडकास्ट में। पॉडकास्ट के अंत में आपको बताएंगे बैंकों से जुड़ी कई खबरें जो निश्चित तौर पर आपके लिए ज़रूरी खबरें हैं। फिलहाल चलिए पहली खबर की ओर। मंगलवार को जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के एक सत्र में भारत ने पाकिस्तान की तीखी आलोचना की है। दरअसल संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के एक सत्र में पाकिस्तान ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में कश्मीर का मुद्दा उठाया था और भारत पर कई आरोप लगाए थे। पाकिस्तान के बयान के बाद जवाब देने के अपने अधिकार का इस्तेमाल करते हुए पवन कुमार बाथे ने कहा कि आतंकवाद मानवाधिकारों का घोर उल्लंघन करता है और उसके सभी रूपों से कड़ाई से निपटने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अपनी राष्ट्रीय नीति के तौर पर खतरनाक और घोषित आतंकवादियों को पेंशन देता है और अपने क्षेत्र में पनाह देता है। अब वक्त आ गया है जब पाकिस्तान को आतंकवाद की मदद करने और उसे बढ़ावा देने का जिम्मेदार ठहराया जाए। आपको बता दें कि पवन कुमार बाथे संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन के प्रथम सचिव हैं। पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में घुसपैठ की कोशिश के दौरान 12 जून को गिरफ्तार चीनी नागरिक ने जांचकर्ताओं को बताया कि उसके देश की विभिन्न एजेंसियां रक्षा मंत्रालय की वेबसाइट समेत केंद्र सरकार की विभिन्न वेबसाइटें हैक करने की कोशिश कर रही हैं। इस मामले की जांच कर रहे स्पेशल टास्क फोर्स के सूत्रों ने मंगलवार को यह जानकारी दी। पकड़े गए चीनी नागरिक हैन जुनवे ने पूछताछ के दौरान अधिकारियों को बताया कि चीनी एजेंसियों ने बंगलुरु की उस कंपनी को निशाना बनाया जो मंत्रालय और BSNL से जुड़ी हुई है। STF के अधिकारी ने समाचार एजेंसी PTI भाषा को बताया कि कई एयरोस्पेस कंपनियां भी इन एजेंसियों के निशाने पर हैं। अधिकारी के मुताबिक चीनी नागरिक ने बताया कि चीन की एजेंसियां भारत की रक्षा प्रणाली में ताकझांक करने की कोशिश कर रही हैं, इसलिए वे भारतीय रक्षा मंत्रालय की विभिन्न वेबसाइट हैक करने की कोशिश में जुटी हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर ASI सुखबीर यादव ने अंडरवियर पहने नाबालिग लड़कों का जुलूस निकाला और उनसे उठक बैठक करवाई। इस कार्रवाई के बाद डायल 100 पर तैनात तलैया थाने के ASI सुखबीर यादव को लाइन अटैच कर दिया गया है। लड़कों के कपड़े छुपाने वाले दो गोताखोरों पर भी कार्रवाई की गई है। इस मामले की जाँच IPS अफसर विजय खत्री कर रहे हैं। राज्य बाल संरक्षण आयोग ने भी ASI की इस कार्रवाई पर एतराज जताया है। आपको बता दें कि वीकेंड लॉकडाउन के दौरान भोपाल के बड़ा तालाब में कुछ नाबालिग लड़के नहा रहे थे। डायल 100 की नज़र उन पर पड़ी तो उसमें तैनात ASI ने उन लड़कों की अंडरवियर में ही परेड करवा दी। DIG इरशाद अली इस कार्रवाई की जानकारी मिलने के बाद तत्काल एक्शन मोड में आए। उन्होंने डायल 100 पर तैनात तलैया थाने के ASI सुखबीर यादव को लाइन अटैच कर दिया। भारत समेत 9 देशों में मिले कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट ने चिंता बढ़ा दी है। देश में इसके अब तक 22 केस सामने आ चुके हैं। केंद्र ने कहा कि डेल्टा प्लस वेरिएंट पर कड़ी नज़र है। केंद्र सरकार ने राज्यों को इससे निपटने के लिए चिट्ठी लिखकर आगाह किया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर तमाम जानकारियां जुटाई जा रही हैं। इसके साथ ही सरकार ने कहा कि डेल्टा वेरिएंट पर कोविशील्ड और कोवैक्सीन असरदार हैं। आपको बता दें कि देश में कोरोना की दूसरी लहर के लिए जिम्मेदार डेल्टा वेरिएंट इस वक्त भारत सहित दुनिया के 80 देशों में है, जबकि डेल्टा प्लस वेरिएंट भारत समेत 9 देशों में है। कोरोना का डेल्टा प्लस वेरिएंट अमेरिका, UK, पुर्तगाल, स्विट्जरलैंड, जापान, पोलैंड, नेपाल, चीन, रूस सहित भारत में पाया गया है। हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक भारत में डेल्टा प्लस वेरिएंट के 22 मामलों में 16 महाराष्ट्र के हैं, बाकी मामले केरल और मध्य प्रदेश के। ये खबरें आप न्यूज 18 हिंदी के पॉडकास्ट में सुन रहे हैं। इन्हें विस्तार से पढ़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट hindi.news18.com पर जाएं। कोरोना संक्रमण के खिलाफ वैक्सीनेशन अब तक का सबसे बड़ा हथियार है। बिहार में कोरोना वैक्सीन को लेकर 1 जून से मेगा अभियान की शुरुआत हो गई है। अगले 6 महीने में 6 करोड़ लोगों को टीका लगाने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं बैंकों ने लोगों को प्रेरित करने के लिए नए ऑफर की भी शुरुआत की है। बैंकों ने वैक्सीन लेने के बाद फिक्स डिपॉजिट करने वालों को ज़्यादा ब्याज देने की स्कीम का ऐलान किया है। इस स्कीम के तहत एक डोज या दोनों डोज लेने वाले व्यक्ति को ज़्यादा ब्याज दिया जाएगा। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने इम्यून इंडिया डिपॉजिट स्कीम शुरू की है। यह फिक्स डिपॉजिट 1111 दिनों में मैच्योर होगी। इस स्कीम के तहत वैक्सीन लगवा चुके लोगों को सेंट्रल बैंक फिक्स डिपॉजिट करने पर पहले से तय ब्याज दर से 0.25% और वरिष्ठ नागरिकों को 0.75% ज़्यादा ब्याज देगा। सेंट्रल बैंक के अलावा यूको बैंक भी कई ऑफर दे रहा है। यूको बैंक ने यूको वैक्सीन 999 नाम से योजना की शुरुआत की है, जिसके तहत लोगों को 0.30% ज़्यादा ब्याज देने का ऐलान किया गया है। इस योजना में मैच्योरिटी 999 दिनों में पूरी होगी। बात जब बैंकों की चली तो आपको ध्यान दिला दूं कि 1 जुलाई से SBI के कुछ नियम बदल जाएंगे। SBI ने ATM से पैसा निकालने, बैंक ब्रांच से पैसा निकालने और चेकबुक को लेकर नियमों में 1 जुलाई से बदलाव की घोषणा की है। SBI के बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट अकाउंट खाताधारकों के लिए हर महीने 4 मुफ्त नकद निकासी उपलब्ध होगी, जिसमें ATM और बैंक शाखाएँ शामिल हैं। बैंक फ्री लिमिट के बाद हर ट्रांजेक्शन पर ₹15 प्लस GST चार्ज करेगा। इसके अलावा SBI बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट अकाउंट के खाताधारकों को एक फाइनेंशियल ईयर में 10 चेक की कॉपी मिलती है। अब 10 चेक के पत्तों के लिए बैंक आपसे ₹40 प्लस GST, 25 चेक लीव के लिए ₹75 प्लस GST, इमरजेंसी चेक बुक पर 10 पत्तों के लिए ₹50 प्लस GST आपसे वसूल करेगा। वरिष्ठ नागरिकों को चेकबुक पर नए सेवा शुल्क से छूट दी जाएगी। केनरा बैंक के ग्राहकों के लिए यह खबर महत्वपूर्ण है। 1 जुलाई 2021 से सिंडिकेट बैंक का IFSC कोड बदलने जा रहा है। सिंडिकेट बैंक ने सभी ग्राहकों को अपने ब्रांच से अपडेटेड IFSC कोड के विषय में जानकारी लेने के लिए कहा है। केनरा बैंक की ओर से कहा गया है कि सिंडिकेट बैंक के विलय के बाद सभी ब्रांच के IFSC कोड में बदलाव किया गया है। बैंक ने ग्राहकों से कहा है कि IFSC कोड को अपडेट कर लें, नहीं तो 1 जुलाई से NEFT, RTGS और IMPS जैसी सुविधाओं का लाभ नहीं ले सकेंगे। देश भर में 21 जून से शुरू हुए कोरोना वैक्सीन के टीकाकरण के महाअभियान के तहत पहले दिन सोमवार को 86 लाख से अधिक टीके लगाकर रिकॉर्ड बनाया गया था, लेकिन मंगलवार को यह महाअभियान थोड़ा धीमा हो गया। 22 जून की रात 11 बजे तक के आंकड़ों के अनुसार देश में वैक्सीन की कुल 54 लाख डोज लगाई गई। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार भारत में कोविड-19 का कुल टीकाकरण कवरेज 29 करोड़ का आंकड़ा पार कर गया है। मंत्रालय के अनुसार 18 से 44 आयु वर्ग में मंगलवार को 32,81,562 से अधिक टीके पहले डोज के रूप में लगाए गए, जबकि दूसरे डोज के तौर पर 71,655 टीके लगाए गए। टीकाकरण अभियान के तीसरे चरण की शुरुआत के बाद कुल मिलाकर 37 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इस आयु वर्ग के 6,55,38,687 से अधिक लोगों ने पहला डोज ले लिया है। 14,24,612 से अधिक लोगों ने अपनी दूसरी खुराक ले ली है। ये खबरें आप News18 हिंदी के पॉडकास्ट में सुन रहे थे। इन्हें विस्तार से पढ़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट hindi.news18.com पर जाएं। News18 हिंदी के पॉडकास्ट में आज इतना ही। नई खबरों और नए अपडेट के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अनुराग अन्वेषी को दें विदा। नमस्कार दोस्तों।